श्रोता नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से जकरिया नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक का मुख्य विषय है मसीह का आगमन, और इस पुस्तक का लेखक स्वयं जकरिया नबी है, जिसके नाम का अर्थ है यहोवा स्मरण करता है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
मेरा संग
मेरे लब
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे आशा है कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने प्रिय परिवार और मित्रों के साथ रेडियो के निकट तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और उन सभी मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने उन तमाम श्रोता मित्रों को जो हमारे इस रेडियो कार्यक्रम को सुनकर अपने जीवन में आशीष प्राप्त कर रहे हैं और इतना ही नहीं, पत्र और फोन के द्वारा से अपनी आशीषों को हमारे साथ बांट रहे हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे ताकि आप और अधिक परमेश्वर की संगति में बढ़ने पाएं। मैं आशा करता हूं कि हमारे अन्य श्रोता मित्र भी अपने आशीषों को हमारे साथ बांटेंगे ताकि हम एक साथ मिलकर परमेश्वर को धन्य कहने पाएं। मित्रों, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से जकरयाह नामक पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ने से पहले प्रार्थना में जाएं, परमेश्वर से सहायता मांगे ताकि आज के अध्ययन के द्वारा भी हम आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त कर सकें। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर और मधुर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम फिर से आपके जीवित और सामर्थी वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम अलग अलग स्थानों पर बैठकर रेडियो के निकट आपके वचन को रेडियो के माध्यम से सुनना चाहते हैं, मनन चिंतन करना चाहते हैं, हमारी विनती है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को जो इस समय अलग अलग स्थानों में, शहरों में, गाँव में, पहाड़ों में, जहाँ कहीं भी आपके वचन को सुनने के लिए बैठे हैं, आप उन्हें अपने आशीष प्रदान करें, उन्हें अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ दें ताकि आज का वचन उनके हर एक के जीवन के लिए व्यक्तिगत वचन होने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, हमारी विनती है कि आप हम सबको आशीषित करें। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो इस समय निराश और परेशान हैं, चिंता और तनाव में हैं, दबाव में हैं, बीमार अवस्था में हैं। आप उन पर भी कृपा दृष्टि करें ताकि आपके वचन के प्रकाशन में वे अपने जीवन को देखने पाएं और आपके द्वारा आशीषों को ग्रहण कर सकें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हम सब जकरयाह की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और अब तक हमने जकरयाह की पुस्तक उसके एक से लेकर के सात अध्याय, उसके सात पद तक का अध्ययन किया है। अब यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग, अर्थात इसराइली लोग जो बंधुआई में चले गए थे और वापस लौट आए हैं, अभी भी निराशा से उभरे नहीं हैं। उन्होंने उत्तरी क्षेत्र के लोगों से अपने प्रतिनिधियों को यरूशलेम के मंदिर में याजकों के पास भेजा कि जाकर उनसे एक प्रश्न पूछें। यह प्रश्न उनके उपवास रखने और विलाप करने से संबंधित था। वे जब बेबीलोन की बंधुआई में, अर्थात गुलामी में थे, तब पांचवें और सातवें महीने में उपवास रखकर विलाप करते थे। अतः उन्होंने याजकों से यह जानना चाहा कि क्या उन्हें अब भी उपवास रखना और विलाप करना आवश्यक है या था। अतः परमेश्वर सीधा उनके मन पर उंगली रखता है और तब क्या होता है, आइए हम पढ़ेंगे जकरयाह की पुस्तक सात अध्याय उसके आठ पद में लिखा है, फिर यहोवा का यह वचन जकरयाह के पास पहुंचा, सेनाओं के यहोवा ने यों कहा है। ध्यान दीजिए, पद आठ में जकरयाह स्पष्ट करता है कि जो वह कह रहा है वह उसके अपने विचार नहीं वरन परमेश्वर की वाणी है। कहता है, यदि मन सही नहीं है तो रीतियों का पालन करना निरर्थक है। आज हम में से कई लोग इस संसार में हैं, वे परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन तो नहीं करते हैं, परंतु बहुत सारे रीति विधियों को करने में वे सक्षम हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं, परंतु मन की सीधाई से चलने और उसकी आज्ञाओं का पालन करने वालों को ढूंढता है। अब परमेश्वर उन पर ज्योति डालता है। जकर्या के पुस्तक 7:9-10 में लिखा है, खराई से न्याय चुकाना और एक दूसरे के साथ कृपा और दया से काम करना, ना तो विधवा पर अंधेर करना, ना अनाथों पर, ना परदेशी पर और ना दीन जन पर, और ना अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना करना। मेरे प्रियो, परमेश्वर की 10 आज्ञाओं में से पहली 4 आज्ञाएं सीधी परमेश्वर के साथ मनुष्य के उत्तरदायित्व से संबंधित है। 5वीं मनुष्य और उसके माता पिता से संबंधित है। बच्चों को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करके अनुशासित होना है कि बड़े होने पर वे अपने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करें। और फिर मनुष्य के साथ मनुष्य के संबंध में 5 आज्ञाएं निर्गमन की पुस्तक 20:13-17 में दी गई हैं। लिखा है, तू हत्या मत कर, तू व्यभिचार मत कर, तू चोरी मत कर, तू अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही मत दे, तू अपने पड़ोसी के घर का लालच मत कर, उसकी पत्नी, उसका दास, उसकी दासी, उसका बैल, उसका गधा आदि किसी की भी लालच मत कर। मेरे मित्रों, यहां पर आप देखिए वह इन आज्ञाओं को किस प्रकार हमारे जीवन में चाहता है। सेनाओं का यहोवा ने यूं कहा है, खराई से न्याय चुकाना और एक दूसरे के साथ कृपा और दया से काम करना, अर्थात झूठी गवाही मत देना, ना चोरी करना और ना झूठ बोलना और ना लालच करना, ना तो विधवा पर अंधेर करना, न अनाथों पर, न परदेशी पर, न दीन जन पर, और न अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना करना। ओह, यह तो हमारे दैनिक जीवन आचरण से संबंधित है। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु ने इन 10 आज्ञाओं को एक ऊंचे स्तर पर पहुंचाया है। यद्यपि वह केवल 2 ही आज्ञाओं का उदाहरण देता है, वह तो यहां तक कहता है कि यदि आप अपने भाई पर क्रोध करते हैं तो आप वास्तव में उसकी हत्या करते हैं। परमेश्वर कहता है कि वे रीतियों का पालन करते थे, परंतु आवश्यक था कि वे पूरे सप्ताह रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार भी उनका पालन करते हैं। शुक्रवार को वे उपवास रखते, दुख मनाते और बलि चढ़ाते थे। मलाकी की पुस्तक में परमेश्वर कहता है, तुम कहते हो कि तुम बलि चढ़ाने से ऊब गए हो, तुम्हें मेरे स्थान में होना था, मैं तो तुम्हारे भेंटों से घृणा से भर गया हूं। मेरे मित्रों, कई बार हम इस बात को भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में पवित्रता, शुद्धता, ईमानदारी को देखना चाहता है, परंतु हम उन कार्यों को करते हैं जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। आज चारों तरफ घूस, व्यभिचार, चोरी, हत्या सब कुछ पाए जाते हैं, परंतु परमेश्वर कहता है कि उनका न्याय होगा। जकर्या की पुस्तक 7:11 में आगे हम पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, परंतु उन्होंने चित लगाना ना चाहा और हट किया और अपने कानों को बंद कर लिया ताकि सुन ना सके। वे परमेश्वर की बात सुनना नहीं चाहते थे। आज भी ऐसे मनुष्यों की कमी नहीं है। हट किया, कैसा सजीव चित्रण है। मुझे याद है कि मैं एक स्कूल में पढ़ने के लिए जाता था। मैं अपनी कक्षा के मित्रों के साथ बैठा हुआ कार्यक्रम में कुछ परेशानी उत्पन्न कर रहा था। मेरे पिता ने मुझे देखा तो आकर मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने उनका हाथ झटक दिया। मेरे पिता ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाहर ले जाकर कहा, देखो मेरे बेटे, मैं तुम्हारी पिटाई करूंगा, इसलिए नहीं कि तुमने मेरा हाथ झिड़क दिया है, परंतु इसलिए कि तुमने आज्ञा मानने से विद्रोह किया है। तब उन्होंने मुझे 5 मिनट तक समझाया कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। जी हाँ, परमेश्वर भी हमें बार बार अवसर देता है, मौका देता है कि हम अपने उन गलतियों को ना दोहराएं, उसकी ओर लौट आएं। परमेश्वर ने भी इसराइल के कंधे पर हाथ रखा तो उन्होंने उसका हाथ झटक दिया। आज परमेश्वर अपने विश्वासियों से कहता है, ऐसा मत कर, ऐसा जीवन मत जी। हाँ मेरे भाई, हाँ मेरी बहन, आप जो जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर ऐसा जीवन जीने के लिए आपको मना कर रहा है। हो सकता है कि आप इस बात को भूल बैठे हैं कि आपको कोई नहीं जानता है कि आप क्या कर रहे हैं, परंतु परमेश्वर जानता है। आप हट न करें जैसा कि वे हट करते थे और अपने कान बंद कर लेते हैं। वे सुनना नहीं चाहते हैं कि परमेश्वर क्या कहता है। क्या आज आप भी अपनी कानों को बंद करके बैठे हैं? क्या आप परमेश्वर की वाणी सुनना नहीं चाहते हैं? एक बार एक छोटा बालक मेरे फूलों की क्यारी में शैतानी कर रहा था। मैंने उसे रोकना चाहा तो उसने कहा, मैं बाहर नहीं निकलूंगा। मैंने उसे कंधे से पकड़ा तो उसने भी वही किया जो मैंने उसके साथ किया था। मैंने उसे पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। और तब मेरे बेटे ने सराहना में कहा, मैं सोचता था कि आपने इसे इतना अधिक सिर पर चढ़ा रखा है कि आप उसे कभी अनुशासन में नहीं ला पाएंगे। मेरे प्रियो, कई बार हम ऐसा कर बैठते हैं, परंतु हमें अनुशासन में लाना तो होगा ही। यहाँ पर लिखा है, परंतु उन्होंने चित लगाना न चाहा और हट किया, अपने कानों को बंद कर लिया कि सुन न सकें। इसराइल बंधुआई में गया क्योंकि उन्होंने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा लाए गए परमेश्वर के वचन को नहीं सुना, नहीं माना। उन्होंने परमेश्वर से मुंह मोड़ लिया था। उन्होंने परमेश्वर से संबंधित आज्ञाओं को तोड़ा था और परमेश्वर की दृष्टि में वे अपराधी थे। अब सवाल यह होता है कि आप क्या हैं? क्या आप उसकी आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं या मान रहे हैं? क्या आप उसकी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? यदि नहीं तो आप भी उसकी दृष्टि में अपराधी हैं। मेरे मित्रों, यदि आपका मन सही नहीं है तो आपका धार्मिक रीतियों को पूरा करना व्यर्थ है। यदि आप अपना जीवन नहीं सुधारते हैं तो आप उस समूह में हैं जिन्हें प्रभु यीशु ढोंगी कहता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि प्रभु यीशु ने किसी विश्वासी को कभी ढोंगी नहीं कहा है? ये वे लोग हैं जो कटोरे को बाहर से धोकर चमकाते हैं, परंतु भीतर से वह मैला रहता है। देखिए मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसके 25 और 26 पद को। इसराइल की यही समस्या थी। परमेश्वर ने उनके सामने 10 आज्ञाएं रख दी, उनका व्यवहारिक, सामाजिक और पारिवारिक जीवन। इस प्रकार परमेश्वर ने उन पर प्रकट कर दिया कि वह उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं देता है। आज यदि आप भी प्रार्थना कर रहे हैं और आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा है तो आप परमेश्वर पर दोष न लगाएं, परंतु व्यक्तिगत जीवन को जांचें कि क्या आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। यदि आप कर रहे हैं तो निश्चय जाने कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको अवश्य देंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं परंतु चाहते हैं कि आप थोड़ा इंतजार करें। जकरिया के पुस्तक 7:12 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, वरन उन्होंने अपने हृदय को इसलिए पत्थर सा बना लिया कि वे उस व्यवस्था और उन वचनों को न मान सकें जिन्हें सेनाओं के यहोवा ने अपने आत्मा के द्वारा पूर्व काल के भविष्यद्वक्ताओं से कहला भेजा था। इस कारण सेनाओं के यहोवा की ओर से उन पर बड़ा क्रोध भड़का। ध्यान दीजिए, लिखा है, इस कारण सेनाओं के यहोवा की ओर से उन पर बड़ा क्रोध भड़का। राजा नबूकदनेस्सर द्वारा यरूशलेम को नष्ट करना और उन्हें बंधुआई में ले जाना एक अत्यधिक भयानक घटना थी। वे व्यवस्था के अनुसार सब काम करते तो थे परंतु उनका मन परमेश्वर से बहुत दूर था। वे परमेश्वर के लिए लज्जा का कारण थे। जकरिया 7:13 में आगे लिखा है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना वैसे ही उनके पुकारने पर मैं भी ना सुनूंगा। परमेश्वर ने उनसे साफ साफ कहा, मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना। जब वे बंधुआई में गए तब वे परमेश्वर को पुकारने लगे, परंतु परमेश्वर ने कहा, अब मैं नहीं सुनूंगा। मेरे मित्रों, आज दिखाया जाता है कि एक धर्म भ्रष्ट मनुष्य अपनी असाध्य रोगी संतान के लिए प्रार्थना करता है और परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनकर रोगी बालक या बालिका को रोग से मुक्त कर देता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर ऐसी प्रार्थना नहीं सुनता है। आपको परमेश्वर के साथ उचित संबंध बनाना है, तदुपरांत उससे प्रार्थना करना है, अन्यथा सब कुछ व्यर्थ है। तो क्यों ना आज हम अपने जीवन को प्रभु की निकटता में लाएं, अपने आप को ठीक करें, अपने संबंध को ठीक करें, ताकि हम उन आशीषों को प्राप्त कर सकें। जकरिया 7:14 में, जो इस अध्याय का अंतिम पद है, लिखा है, वरन मैं उन्हें उन सब जातियों के बीच जिन्हें वे नहीं जानते आंधी के द्वारा तितर वितर कर दूंगा और उनका देश उनके पीछे ऐसा उजाड़ पड़ा रहेगा कि उसमें किसी का आना जाना न होगा। इसी प्रकार से उन्होंने मनोहर देश को उजाड़ दिया। परमेश्वर कहता है कि उसने उस देश को उजड़ने दिया। आज वहां जाने वाले पर्यटक निराश हो जाते हैं क्योंकि उनकी समझ में वह देश दूध और शहद से पूर्ण एक स्थान था, परंतु आज उसे सुंदर स्थान कहना एक भ्रम है। वहां आप केवल चट्टान देखेंगे, वह एक सूखा और उजड़ा हुआ स्थान है। निसंदेह वह एक अति रमणीय स्थान था, परंतु आज वह उजाड़ पड़ा है। मेरे प्रियो, आज भविष्यवाणी की पूर्ति न होने का प्रमाण है कि वह देश उजाड़ पड़ा है। यद्यपि यहूदी स्वदेश लौट आए हैं और इसराइल एक राष्ट्र भी बन गया है, वहां समस्याओं का अंत अभी नहीं है। किसी ने मुझे बताया कि इसराइल में संपूर्ण संसार से अधिक कर लगाए जाते हैं। क्या आप उसे प्रतिज्ञा का देश कहेंगे? क्या आप परमेश्वर को उनकी इस दशा का दोष देंगे? मेरे विचार में आज का इसराइल परमेश्वर द्वारा एकत्र किया गया इसराइल नहीं है। मेरे मित्र ने मुझे बताया कि वहां के निवासी बाहर निकलना चाहते हैं। मेरे मित्रों, जो शिक्षक आज के इसराइल को भविष्यवाणी से जोड़ते हैं, उनकी शिक्षा के संबंध में आज इसराइल की दशा क्या कहती है? इसराइल आज उजड़ा हुआ है, परंतु एक दिन वह निश्चय ही मनोहर स्थान होगा, क्योंकि यह परमेश्वर का वचन है और वह उसे पूरा करेगा। परंतु आज आपकी दशा क्या है? क्या आपका जीवन भी उजाड़ है? क्या आपके जीवन में शांति और आशा नहीं है? यदि हाँ, तो आज आप प्रभु यीशु के पास आएं, क्योंकि वह आपके जीवन को हरियाली बना सकता है। आप अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, उसे अपने जीवन में आने दें, उसकी आज्ञाओं का पालन करें और निश्चय जाने कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत की आशीषें देगा। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में फिर से परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त किया है। प्रभु आप सबके साथ हो और आप सबकी सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि